राजवीर के इस पागलपन भरे व्यवहार को देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और चुपचाप ये सब देखने लगा। तब अचानक राजवीर ने आगे बढ़कर प्रियंका के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया था। अब तो प्रियंका के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। तब राजवीर प्रियंका के चेहरे को देखकर बोला था, अगर मैं तुझे ये चेहरा दे भी सकता हूं तो तेरा चेहरा मिटा भी सकता हूं, तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूं, तेरी जान ले सकता हूं, इसलिए अपनी हद में रहना। और खबरदार, अगर तूने यहां जरा सी भी आवाज निकाली तो तू नहीं जानती कि इस चेहरे के पीछे मेरा कितना जुनून है। ये कहते हुए राजवीर हंस पड़ा था, लेकिन उसकी हंसी में एक खतरनाक सन्नाटा साफ सुनाई दे रहा था। अब तो राजवीर का ऐसा भयावह चेहरा देखकर प्रियंका पूरी तरह से कांप रही थी और डर के मारे थरथर कांपने लगी थी। वहीं तभी तक नानी तुरंत वहां पहुंच गई उसे संभालने के लिए और आगे बढ़ी। लेकिन तभी जैसे ही प्रियंका, दादाजी और अभिमान जी की नज़रें अरमान की गोद में मौजूद बेजान आस्था के शरीर पर पड़ीं, तो उन लोगों की हैरानी और भी बढ़ गई। दादाजी तो तुरंत ही डगमगाते हुए वहीं बैठ गए थे। अभिमान जी पूरी तरह से रोने लगे थे और बोले थे, ये क्या हो गया हमारी आस्था को, उठो बेटा उठो। अभिमान जी लगातार आस्था को आवाज़ लगाने लगे थे, लेकिन आस्था के वजूद में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर तो अभिमान जी तुरंत ही गुस्से से राजवीर की ओर झपटे थे, लेकिन राजवीर ने तुरंत ही उन्हें धक्का दे दिया, जिससे अभिमान जी जाकर दूसरी ओर गिर पड़े थे। वहीं दादाजी के मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा शरीर बेचैन हो चुका हो और वे केवल आंखों से आंसू बहाते हुए आस्था को अरमान की गोद में देख रहे थे। अब जैसे ही नानी माँ प्रियंका को संभाल रही थी, उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी और उसे शांत होने के लिए समझा रही थी, तभी राजवीर ने बड़ी ही सख्त और ठंडी नज़रों से नानी माँ की ओर देखा और अचानक आगे बढ़कर उन्हें जोर से पीछे धक्का दे दिया था और सीधा प्रियंका को बालों से कसकर पकड़ लिया। वो उसके चेहरे को अपनी उंगली घुमाने लगा था। राजवीर के सनकपन से प्रियंका पूरी तरह घबरा गई थी। और फिर राजवीर तुरंत ही प्रियंका का चेहरा अलमान की ओर ले जाकर बोला था, तुम जानना चाहते हो ना आखिरकार इस चेहरे की सच्चाई क्या है और आखिर नैना माथुर का राज क्या है। आज मैं तुम्हें नैना माथुर की कहानी जरूर बताऊंगा। ये देखो, सबसे पहले इस चेहरे को देखो। ये चेहरा भले ही तुम्हें ज्यादा खूबसूरत ना लगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ आस्था का ही चेहरा खूबसूरत लगता है, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। और कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत करते हैं वही दुनिया में सबसे हसीन लगता है। लेकिन तुम्हें पता है मेरी मोहब्बत की लव स्टोरी का पहला हिस्सा क्या है? मेरी मोहब्बत ने मुझे एक तमाचा मारा था, वो भी तब जब मैं उसे देख रहा था। ये बताओ, क्या राजवीर जिंदल कोई गैर है? उसके पूरे शरीर का हर हिस्सा भी तो मेरा ही थे, वो भी तो मेरी अपनी ही थी। लेकिन तुम जानते हो पहली मुलाकात में नैना माथुर ने क्या किया? उसने मुझे सबके सामने खींचकर तमाचा मार दिया था। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? लेकिन जिस बदतमीजी से राजवीर अरमान से बातें कर रहा था, वो बदतमीजी टाइगर और मारिया दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और तुरंत आगे बढ़कर पीछे से उन्होंने राजवीर को खींचकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन राजवीर ने तुरंत ही रहस्यमयी तरीके से उनकी ओर मुड़कर देखा और ठंडी आवाज में बोला था, जब दो बड़े लोग इस तरह से बात कर रहे हों तो तुम लोगों को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तभी टाइगर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे किंग से ऊंची आवाज में बात की, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, आज अभी के अभी तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। वहीं मारिया भी गुस्से से कांपते हुए बोली थी, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहीं खत्म कर देंगे। दोनों की आंखों में अरमान को बचाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वहां अरमान के भाई, दोस्त सभी मौजूद थे, लेकिन आस्था की हालत देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे राजवीर का सामना कर सकें या अरमान की मदद कर सकें। सभी बस खामोशी से, बेबस निगाहों से अरमान की गोद में पड़ी बेहोश आस्था को देख रहे थे। तभी अचानक टाइगर और मारिया को इस तरह बोलते देखकर राजवीर हल्का सा हंसा और सड़क पर खड़े खड़े अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला था, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल जहर लगते हैं जो इस तरह मेरे मामले में टांग अड़ाते हैं। अरमान, मैं तो तुमसे बात कर रहा था, लेकिन देखो इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिलहाल मेरा टाइगर या मारिया का खून करने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहते ही राजवीर ने रहस्यमय ढंग से एक बटन दबाया और देखते ही देखते एक लोहे का पिंजरा ऊपर से गिरा और टाइगर उसके अंदर कैद हो गया। उसी पल दूसरा पिंजरा गिरा और मारिया भी उसमें कैद हो गई थी। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये पिंजरे अचानक कहां से आ गए। लेकिन राजवीर को टाइगर और मारिया की ताकत का अंदाजा अच्छी तरह था। वो जानता था कि ये दोनों लोहे की सलाखों को भी मोड़ सकते हैं।
इसीलिए उसने उन पिंजरों में ऐसा तेज करण छोड़ दिया था कि चाहकर भी वे बाहर नहीं निकल सकते थे। अब टाइगर गुस्से से दहाड़ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, लेकिन वो ना तो राजवीर तक पहुंच पा रहा था और ना ही अरमान की मदद कर पा रहा था। उधर मारिया भी दूसरे पिंजरे में कैद तड़प रही थी। अब वहां मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह पर इतने खतरनाक पिंजरे कैसे आ गए। लेकिन तभी वंशिका का दिमाग तेजी से चलने लगा और उसे समझते देर नहीं लगी कि असल में राजवीर ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसने इस जगह पर हर एक कदम पर इस तरह का जाल बिछा रखा था कि कोई भी यहां से निकल नहीं पाएगा। अब तो सब एक दूसरे को देखने लगे थे। ध्रुव, आकाश, सुमित, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर राजवीर को मुक्का मार दे या उसका गला दबा दे, क्योंकि आस्था की हालत ने सबको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। वहीं अरमान केवल लाल आंखों से आस्था को अपनी गोद में लिए सारा दृश्य देख रहा था। तभी नानी माँ जल्दी से आगे बढ़ी और आस्था के चेहरे पर एक सफेद कपड़ा ढक दिया ताकि उसका चेहरा ज्यादा देर तक किसी को दिखाई ना दे। ये देखकर अरमान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि शायद नानी माँ को सब कुछ समझ में आ गया है। फिलहाल देखते ही देखते राजवीर ने तुरंत कुछ बटन प्रेस किया और जितने भी उसके इंटरनेशनल लेवल के सिक्योरिटी गार्ड थे, जिन्हें अभी तक छुपा कर रखा गया था, वे सभी अचानक वहां आ पहुंचे। अब पलक झपकते ही वहां कई सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो गए थे। अविनाश, अबीर, ध्रुव और आहान, इनफैक्ट वहां मौजूद सभी लोगों को राजवीर के इंटरनेशनल लेवल के बॉडीगार्ड ने तुरंत गन पॉइंट पर ले लिया था। वहीं सम्राट हंसने लगा था और हंसते हुए वो तुरंत अरमान के पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और उसकी ओर गर्दन तिरछी करके देखकर बोला था, ये क्या अरमान, सच में ये क्या हो गया? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना? तुम जानते हो, तुम्हारी बीवी के साथ तो न जाने मैंने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या करने का सोचा था मैंने। देखो, वो मुझे छोड़कर चली गई, उससे कहीं ज्यादा मेरा दिल रो रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो देखो, चेक करो। ये बोलकर उसने अरमान का हाथ पकड़कर अपने दिल पर लगा दिया था। वहीं अरमान ने तुरंत अचानक अपने सिर से सम्राट के सिर पर जोर से वार कर दिया। सम्राट का सिर एक पल के लिए झनझना गया था, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोला था, वैसे मानना पड़ेगा, दर्द मुझे तुम्हारी ताकत का कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारी ताकत और ज्यादा बढ़ गई हो। चलो, अब थोड़ी देर के लिए तुम अपनी बीवी को मुझे दे दो और तुम जाकर गुरुजी से उनकी लव स्टोरी सुनो, लव स्टोरी का मजा लो। इस तरीके से अगर अपनी बीवी को गोद में पकड़कर बैठे रहोगे तो लव स्टोरी कैसे सुनोगे?
चलो एक काम करते हैं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तुम आराम से खड़े होकर कुर्सी पर बैठ जाओ और उधर गुरुजी से उनकी लव स्टोरी सुनो। तब तक तुम्हारी बीवी को पकड़कर मैं ही बैठ जाता हूँ। वैसे भी इसके जिंदा रहते तो इसके साथ कुछ नहीं कर पाया, अब कम से कम थोड़ी देर इसे अपनी बाहों में लेकर अपने मन की तसल्ली तो कर ही लूँ। अब सम्राट की इस तरह की बातें सुनकर अविनाश जोर से दहाड़ा था, बंद कर अपनी घटिया बकवास, अगर मेरी बहन के बारे में तूने एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तेरी जान ले लूँगा सम्राट ठाकुर, मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अविनाश को दहाड़ता देखकर सम्राट उसकी ओर देखकर बोला था, अरे मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर दो बचपन के भाई बैठकर बातें कर रहे हैं और तुम हो कि बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें आपको इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है बड़े भैया जी? और वैसे भी अब आपकी बहन जिंदा थोड़ी ना है कि उसकी इज्जत जाने से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। कहते हैं ना, इंसान के मरने के साथ उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है, तो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। सम्राट की इतनी पागलपन भरी बातें सुनकर सभी का खून खोलने लगा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सभी के हाथों में हथकड़ियां लगा दी थीं और सभी को पूरी तरह से गन पॉइंट पर ले लिया था। कोई चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं अबीर गुस्से से दहाड़कर बोला था, अपनी हद में रह सम्राट, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब सम्राट तुरंत चलते हुए अबीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला था, अरे यार, अब तेरा बीच में क्या रोल है समझ में नहीं आता। चलो, अविनाश सूर्यवंशी मुझसे गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसकी बहन है, अरमान सिंघानिया की बीवी है, लेकिन तेरा क्या? तू क्यों मुंह उठाकर बीच में दहाड़ रहा है? तेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, और वैसे भी वो तेरी पहुंच से शुरू से ही काफी दूर थी, तू उसे कभी हासिल कर ही नहीं पाया। तो मेरी नज़र में तू एक नंबर का यूजलेस इंसान है, जिसे मोहब्बत भी हुई तो अरमान सिंघानिया की बीवी से और पा भी नहीं पाया। सच में तेरी आशिकी पर तरस आता है। सम्राट की इस तरह की बातें सुनकर अबीर का दिल कर रहा था कि वो उसका मुंह नोच ले, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके हाथों में मजबूती से हथकड़ियां लगा दी थीं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी अपना गुस्सा अंदर ही अंदर घोंट रहे थे। वंशिका, रौनक, राधिका और एंजल लगातार उठकर सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आस्था की मौत ने सभी को भीतर से तोड़ दिया था। कोई चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सबकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। फिलहाल सम्राट वापस अरमान के पास आया और उसकी ओर झुककर बोला था, देख ले तेरा क्या डिसीजन है, बता दे। वैसे भी तेरा गुरु मुझे लगता है ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता,
और गुरु को ज्यादा इंतजार करवाना भी नहीं चाहिए। अरमान सिंघानिया ने बदले में सिर्फ उसे घूर कर देखा था। ठीक उसी वक्त राजवीर मुस्कुराते हुए आगे आया। उसने अभी भी प्रियंका के बालों को कसकर पकड़ रखा था। प्रियंका को वो अपने पास ही घसीटकर बिठा चुका था और अरमान के ठीक सामने जाकर बैठ गया था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। प्रियंका पूरी तरह से छटपटा रही थी और राजवीर के पकड़ से छूटने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी राजवीर ने अचानक बंदूक की नली उसके मुंह में डाल दी। क्या राजवीर अपने पागलपन में प्रियंका की जान ले लेगा? क्या अरमान सब लोगों की जान खतरे में डाल देगा? ये सब की जान बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, सुनते रहें पॉकेट एफएम पर तेरे इश्क में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।